पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक, धर्म एवं धर्म दर्शन, रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। शीर्षक है धर्म दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा। धर्म के इतिहास से ज्ञात होता है कि मानव का धर्म से आदिकाल से ही संबंध रहा है। प्रोफेसर एडवर्ड की यह उक्ति बिल्कुल ही सत्य प्रतीत होती है कि सचमुच धर्म इस तरह से विश्व भर में सबसे बड़ी चीज है। मानव जीवन और इतिहास में धर्म का ही प्रमुख स्थान माना जाता है। वस्तुतः धर्म और दर्शन एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। धर्म एक अनुभव है और दर्शन उसी अनुभव पर पुनर्विचार करके उसे एक अंतिम अर्थ प्रदान करता है। परंतु प्रोफेसर गैलवे के शब्दों में मानव विकास की प्रक्रिया में दार्शनिकता का विकास धर्म की अपेक्षा बाद में हुआ है। प्लेटो और अरस्तु दर्शन की उत्पत्ति उस आश्चर्य की भावना के कारण बतलाते हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क में गतिपूर्ण वस्तुओं के चमत्कार पर विचार करने के कारण उत्पन्न होती थी। परंतु आदिम मनुष्यों में भी प्रकृति की घटनाओं ने श्रद्धायुक्त भय और आश्चर्य की भावना का उद्रेक किया, जिससे उसको धार्मिक क्रिया के लिए उत्तेजना मिली। इस आश्चर्य की भावना ने मनुष्य को दार्शनिकता की ओर प्रेरित नहीं किया। दार्शनिकता का विकास तब हुआ जब मनुष्य विकास की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा। ऐसी स्थिति में जब वह स्वतंत्रता और जीवन की कठिनाइयों से अवकाश का अनुभव करने लगा, तब वह आश्चर्य की बौद्धिक व्याख्या करने लगा, और यही दर्शन का मूल है। दर्शन की उत्पत्ति सामाजिक विकास और चिंता रहित मनः स्थिति पर भी आधारित है। गैलवे ने ठीक ही कहा है कि दर्शन समाज के बसंतकालीन यौवन का नहीं प्रौढ़ावस्था का फल है। सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा बौद्धिक विकास और परिपक्वता के साथ ही मानव समस्त अनुभवों की समीक्षा विशिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत करने लगा। इसके फलस्वरूप राजनीति, कला, विज्ञान, धर्म आदि के संबंध में अध्ययन प्रारंभ हो गया। ज्ञान की विभिन्न शाखाएं आदान प्रदान के माध्यम से विभिन्न विषयों की उत्पत्ति, उद्देश्य, समस्याओं और विकास आदि का अध्ययन करने लगी। धर्म जो आदि और पुरातन है, गंभीर और महान है तथा मानव जीवन से घनिष्ठ रूप में संबद्ध है, उसका अध्ययन वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से किया जाने लगा। अगला शीर्षक है भारतीय धर्म दर्शन वेदांत। गैलवे महोदय ने धर्म को ऐतिहासिक दृष्टि से दो रूपों में विभाजित किया है, प्रथम हिंदू धर्म में तथा द्वितीय ईसाई धर्म में। धर्म दर्शन की प्रथम उत्पत्ति वैदिक युग में ही दृष्टिगोचर होती है। वैदिक देवी देवता वेदांत काल में आकर एक ब्रह्म के रूप में ही देखे जाते हैं। इस युग में तार्किक चिंतन और आंतरिक बोध तथा आलोचना प्रत्यालोचना की प्रवृत्ति विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। वैदिक अनेकेश्वरवाद अब आध्यात्मिक धर्म की ओर अग्रसर होता है। पृष्ठ संख्या 2। अनेकेश्वरवाद और कर्मकांड के स्थान पर एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद तथा आध्यात्मवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। वेदांत में ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जगत तथा माया आदि धर्म संबंधी मतों की अत्यंत ही मार्मिक, तार्किक तथा दार्शनिक चिंतन पद्धति से विवेचना की जाने लगी। कहना न होगा कि धर्म की इस दार्शनिक विवेचना के प्रभाव से भारतीय परंपरा के अन्य दार्शनिक चिंतन अछूते नहीं रहे। उदाहरण के लिए बौद्ध तथा जैन धर्म में स्वस्थ धर्म दर्शन की परंपरा वैदांतिक चिंतन से अप्रभावित नहीं है। अगला शीर्षक है पाश्चात्य धर्म दर्शन ईसाई धर्म। गैलवे के शब्दों में भारत ही हमें धर्म दर्शन के प्रारंभ और विकास का उदाहरण प्रदान करता है। इसके पश्चात धर्म दर्शन का विकास ईसाई धर्म में पाया जाता है। भारतीय धर्म दर्शन और ईसाई धर्म दर्शन में सबसे बड़ा अंतर यह देखा जाता है कि भारतीय धर्म दर्शन का विकास किसी बाह्य प्रभाव या चिंतन परंपरा के कारण नहीं हुआ, जबकि ईसाई धर्म में धर्म दर्शन का आरंभ अन्य बौद्धिक चिंतन तथा दार्शनिक परंपरा के प्रभाव के कारण होता है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में ईसाई धर्म नैतिक एवं आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में ही था। प्रारंभ में यह धर्मशास्त्र के स्थान पर जीवन पद्धति के रूप में माना गया, परंतु जब इसमें धर्मशास्त्र का प्रवेश हुआ और यूनानी दर्शन का इस पर प्रभाव पड़ा, तब इसके धर्म दर्शन का रूप भी विकसित हुआ। अंत में जस्टिन मार्टायर ने द्वितीय शताब्दी में ईसाई धर्म को ही वास्तविक दर्शन होने की घोषणा की। पाश्चात्य दर्शन का मध्यकाल दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस काल में धर्मशास्त्र के प्रभाव से दर्शन की स्वस्थ परंपरा कायम नहीं हो सकी। इस युग में आध्यात्मिक अशांति थी। शासक वर्ग की चरित्र भ्रष्टता के कारण नैतिक उत्साह में कमी आ गई थी। ऐसे समय में एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जिसमें लोगों को त्राण मिले। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। पादरियों ने दर्शन और विज्ञान का विरोध किया। जनता को धर्म और धर्मशास्त्र की आवश्यकता थी, दर्शन और विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पादरियों के अनुसार ऊंचे मस्तिष्क के लोग ही दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं। सामान्य जनता के लिए ईसाई धर्म के उद्देश्य ही पर्याप्त थे। अगला शीर्षक है आधुनिक युग। वैज्ञानिक जागृति और चिंतन के फलस्वरूप आधुनिक युग में बौद्धिकता का प्रवेश हुआ, जिसका फल यह हुआ कि धर्म दर्शन का पर्याप्त विकास हुआ। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम लाइबनिट्ज ने धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए दार्शनिक सिद्धांतों को लाने का प्रयास किया। ह्यूम एक दूसरे अनुभववादी दार्शनिक थे, जिन्होंने धर्म दर्शन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने धर्म के सत्यासत्य का पता लगाने के लिए उसके मनोवैज्ञानिक पहलू की विशद विवेचना की। धर्म मनोविज्ञान की दृष्टि से उनकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रिलीजन महत्वपूर्ण है। इसमें भावना, अस्थाई भाव के कार्य एवं धर्म के विकास पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उनकी दूसरी पुस्तक डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन धर्म की आलोचनात्मक व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ह्यूम के पश्चात कांट की देन धर्म दर्शन के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने धर्म की व्याख्या पूर्ण रूपेण बौद्धिक एवं नैतिक दृष्टि से की। कांट के अनुसार धर्म का विषय है नैतिक कर्तव्यों को ईश्वर का आदेश मानकर पालन करना। इनके धर्म दर्शन संबंधी विचार इनकी पुस्तक रिलीजन विद इन दी लिमिट्स ऑफ रीजन अलोन में ही पूर्णतया व्यक्त हुए हैं। कांट के विपरीत स्लायर मारवार ने धर्म की बौद्धिक व्याख्या न करके भावना मूलक की। धर्म में भावना को महत्व देने वाले स्लायर मारवार पहले धर्म दार्शनिक कहे जा सकते हैं। धार्मिक चेतना के रचनात्मक तत्व के रूप में भावना के महत्व को कोई भी धर्म दार्शनिक स्वीकार कर सकता है। पृष्ठ संख्या 3। धर्म दर्शन के ऐतिहासिक विकास में हेगल का मत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनके धर्म दर्शन संबंधी विचारों का ऐतिहासिक मूल्य है। उनकी दृष्टि में धर्म दर्शन को अपनी परिधि में आदिम धर्म, जातीय धर्म तथा ईसाई धर्म को सम्मिलित करना चाहिए। सभी धर्म धार्मिक संबंधों के आदर्श को प्रकट करते हैं तथा साथ ही धर्म के आदर्शों को भी अभिव्यक्त करते हैं। हेगेल का मत है कि इन विभिन्न धर्मों के द्वारा ही एक निरपेक्ष धर्म का जन्म होता है, जो समय की पूर्णता के साथ अपना पूर्ण रूप अव्यक्त करता है। हेगल की दृष्टि में धर्म मानव आत्मा की आवश्यक और सार्वभौमिक मनोवृत्ति है। धर्म में कल्पना की चूंकि प्रधानता होती है, इसलिए उसे दर्शन की बौद्धिकता से परिशुद्ध करना आवश्यक है। धर्म और दर्शन में एक ही सत्य को अव्यक्त किया जाता है, परंतु दर्शन में बौद्धिकता के कारण पूर्ण का प्रत्यय पूर्ण चेतना का रूप ग्रहण कर लेता है। गैलवे ने हेगल के पश्चात धर्म दर्शन के विकास को अग्रलिखित विचारधाराओं के प्रभाव के अंतर्गत बिताया है। पहला है निरपेक्ष आदर्शवादी विचारधारा। इस विचारधारा का सूत्रपात्र स्वयं हेगल ने किया था। इस विचारधारा का मूल मंतव्य यह है कि प्रकृति और मानव दोनों एक ही सत्ता के दो रूप हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत बाटके तथा बीडरमान ने अच्छा कार्य किया। विशेष रूप से बीडरमान का कार्य बौद्धिकता एवं धर्मशास्त्रीय दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा में रहते हुए भी फ्लेडरर ने धर्म में मनोविज्ञान के महत्व को स्वीकार किया है और धर्म में उन्होंने भावना तथा संकल्प को महत्वपूर्ण माना। अंत में यह भी देखने को मिलता है कि फ्लेडरर ने हेगल के आदर्शवाद तथा सर्वेश्वरवाद की अपेक्षा यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा पर अधिक जोर दिया। जर्मनी में इस विचारधारा के अंतर्गत कार्य करने वाले हार्टमन तथा डार्नर हैं। हार्टमन ने धार्मिक चेतना में मनोवैज्ञानिक तत्वों के सापेक्षिक महत्व को पसंद किया तथा इस ओर संकेत किया कि धार्मिक विचारधारा एवं मूल्य अचेतन मन के द्वारा ही निश्चित होते हैं। डार्नर सेलिंग द्वारा तथा विशेष रूप से हेगेल के विचारों से अधिक प्रभावित हुए और तर्कशास्त्र के प्राचीन विश्वास में आस्था व्यक्त की, जिसके द्वारा ही दैवी प्रकृति का तत्वशास्त्र निर्मित होता है। डार्नर ने मानव जीवन के आदर्शवादी तथा यथार्थवादी पहलू में अंतर किया, जिसका संबंध तर्क तथा संकल्प से होता है। फ्लेडरर की भांति डार्नर के विचारों में भी निरपेक्षवादी आदर्शवाद का रूपांतरण यथार्थवादी ज्ञान सिद्धांत द्वारा हुआ। ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका में नव हेगेलवादी विचारों का उल्लेख धर्म दर्शन के क्षेत्र में आवश्यक है। इस हेगेलवादी मत का पोषण करने वाले विचारकों में सर्वप्रथम केअर्ड का नाम उल्लेखनीय है। इनकी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ रिलीजन महत्वपूर्ण रचना है। एडवर्ड केअर्ड की इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, वाटसन की फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ रिलीजन तथा प्रोफेसर रायस की द वर्ड एंड द इंडिविजुअल धर्म दर्शन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अन्य विचारकों की तुलना में इन लेखकों की रचनाएं मनोवैज्ञानिक तत्वों पर विशेष बल देती हैं। अगला शीर्षक है, दूसरा है व्यक्तिगत आदर्शवादी विचारधारा। निरपेक्ष आदर्शवादी विचारधारा के विपरीत एक दूसरी विचारधारा और प्रकट हुई, जिसमें अनुभूति के आत्मनिष्ठ पहलू पर विशेष बल दिया गया। ऐसा दृष्टिकोण जर्मन दार्शनिक लाटजे का है। लाटजे ने अनुभूति के व्यक्तिगत पहलू पर विशेष जोर दिया। उनका कहना है कि हमारे नैतिक और धार्मिक मूल्य निर्णय को ईश्वर विचार के निर्धारण में अवश्य सहायक होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 4। रुडल्फा यूकन तथा हेमनी जीवेक के विचार भी व्यक्तिगत आदर्शवादी विचार के अंतर्गत महत्व रखते हैं। यूकन आध्यात्मिक जीवन की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देते हैं। इनके अनुसार आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश साधारण तथा प्राकृतिक विकास नहीं है, वरन यह निम्न स्तर से अथवा ऐन्द्रिक जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन तक पहुँचना है। धर्म की भाषा में इसे कन्वर्जन या परिवर्तन कहा जा सकता है। जीवेक भी मानव व्यक्तित्व के आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष बल देते हुए कहते हैं कि मानव व्यक्तित्व विश्व विकास का मुकुट है और विकसित व्यक्ति आत्मा तार्किक चिंतन तथा नैतिक मूल्य का संगठन है। इसकी आधार भूमि एक सत्ता है जो अंतिम कारण तथा परम शुभ मानव का परम लक्ष्य है। जीवेक की ईश्वर संबंधी विचारधारा विशेष महत्वपूर्ण है तथा इनकी धर्म दर्शन के क्षेत्र में विशेष देन है। ब्रिटेन में भी निरपेक्ष आदर्शवाद के प्रति प्रतिक्रिया हुई और व्यक्तिगत आदर्शवादी विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इस दिशा में प्रिंगिल पेटिसन तथा हेस्टिंग रैसडाल के कार्य महत्वपूर्ण हैं। अगला शीर्षक है, तीसरा है अनुभववादी विचारधारा। उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अतिरिक्त धर्म दर्शन पर अनुभववादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। इस मत में धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान तथा ज्ञान मीमांसा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस मत के विचारकों के अनुसार धर्म की समस्या के अध्ययन के लिए निरपेक्ष के तत्व शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। यह मत धर्म के बौद्धिक सिद्धांतों पर उतना बल नहीं देता जितना कि ऐतिहासिक तत्वों तथा धार्मिक चेतना की वास्तविक क्रिया पर। इस विचारधारा को रिजले तथा उनके अनुयायियों ने स्वीकार किया तथा तत्वशास्त्र से धर्म को अलग करते हुए धर्मशास्त्र को ऐतिहासिक दैवी प्रकाशन तथा आध्यात्मिक अनुभव के सत्यों पर आधारित माना। इसी प्रकार ओगस्त सावतीय ने अपने धर्म दर्शन में विज्ञान और धर्म के बीच अलगाव किया। इन्होंने धार्मिक ज्ञान के सिद्धांतों के कार्य की चर्चा करते हुए धर्म की बौद्धिक व्याख्या में संदेह किया और बताया कि धर्म का संबंध हृदय से है न कि तर्क या बुद्धि से। इसी श्रेणी में हाफडिंग का भी नाम आता है जिन्होंने धर्म दर्शन को एक नया दृष्टिकोण दिया। इनके अनुसार विचार क्षेत्र और वस्तु का अंतिम आधार हमारे ज्ञान से परे है। हाफडिंग के अनुसार धर्म मूल्यों के संरक्षण में विश्वास है। इनकी इस परिभाषा से धर्म का क्षेत्र विस्तृत हुआ और अनिश्वरवादी मतों को भी धर्म की श्रेणी में माना जाने लगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि धर्म का मूल उसकी व्यवहारिकता में है न कि मात्र किसी परम सत्ता को मानने में। अगला शीर्षक है, चौथा है उपयोगितावादी विचारधारा। इस मत के विचारक सत्य उसे मानते हैं जो उपयोगिता मूलक हो। इनके अनुसार सत्य का समर्थन विचार और वस्तु के संदर्भ में होना आवश्यक है। इसी आधार पर तत्वशास्त्रीय सिद्धांतों की निरर्थकता व्यवहारिक धर्म जीवन में सिद्ध होती है। इस विचारधारा ने धर्म के अध्ययन में अनुभववादी विधि को महत्व दिया है। इस मत के सबसे बड़े पोषक विलियम जेम्स हैं जिनकी देन धर्म दर्शन में अमूल्य कही जा सकती है। इनकी पुस्तक दी वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस धर्म दर्शन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने धर्म का बड़ा ही विशद और मार्मिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है। रहस्यवाद, रहस्यात्मक अनुभूत तथा कन्वर्जन या परिवर्तन आदि का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन किया गया है। पृष्ठ संख्या 5। धर्म दर्शन के इतिहास में मैक्टागार्ट की पुस्तक डॉगमाज ऑफ रिलीजन, हॉकिंग की पुस्तक द मीटिंग ऑफ गॉड इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, रुडॉल्फ ऑटो की पुस्तक द आइडिया ऑफ द होली, अलेक्जेंडर की पुस्तक स्पेस टाइम एंड डीटी, ए एन व्हाइट हेड द्वारा रचित पुस्तक प्रोसेस रियलिटी तथा टेनेंट एंड की पुस्तक फिलोसफिकल थियोलॉजी का अत्यंत ही महत्व है। इनसे धर्म दर्शन का साहित्य समृद्ध हुआ है। इस दिशा में वर्गसान की पुस्तक दी टू सोर्सेस ऑफ रिलीजन एंड मॉरेलिटी अपने ढंग की अनूठी कृति है। डूर खीम द्वारा धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। अगला शीर्षक है, पांचवा है, समाजशास्त्रीय विचारधारा। इस विचारधारा के अंतर्गत धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्याएं की गई हैं। इसके प्रधान प्रवर्तक कांटे हैं। इसमें अनुभववादी विधि को विशेष स्थान दिया गया। इस मत में धर्म को समाज का अभिन्न अंग माना जाता है। सामाजिक शुभ की प्राप्ति में धर्म का सामाजिक पक्ष रहस्यात्मक पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना गया। मानवतावाद के उद्भव में इस विचारधारा को पृष्ठभूमि के रूप में कहा जा सकता है। जॉन ड्यूबी का प्रकृतिवादी मानवतावाद तथा लामेंट का मानवतावादी विश्व दर्शन धर्म दर्शन में एक नया मोड़ कहा जा सकता है। समकालीन धर्मशास्त्रियों ने अब धर्म दर्शन में अनुभववादी विचार प्रणाली का प्रवेश कराया है। यह गतिविधि धर्म दर्शन की व्याख्या के लिए कहाँ तक समीचीन होगी भविष्य ही बतला सकता है। अगला शीर्षक है, आधुनिक भारतीय धर्म दर्शन। जिस प्रकार ईसाई धर्म से प्रभावित होकर पाश्चात्य जगत के आधुनिक दार्शनिकों ने धर्म की दार्शनिक मीमांसा की, उसी प्रकार भारतीय चिंतकों ने भी वेदों और उपनिषदों से प्रभावित होकर धर्म की दार्शनिक व्याख्या की है। इसमें संदेह नहीं कि प्राच्य या पाश्चात्य धर्म दर्शन न केवल प्राचीन धर्म परंपरा से ही प्रभावित हुआ, बल्कि विज्ञान तथा अन्य परिवर्तनकारी प्रभावों ने भी चिंतन में मोड़ उत्पन्न किया है। आधुनिक भारतीय धर्म दर्शन की दृष्टि से 17वीं शताब्दी महत्वपूर्ण है। दारा सिकोह ने धर्म दर्शन के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। मजमूअल बहरेन या समुद्र संगम नामक ग्रंथ में उन्होंने सूफी मत और हिंदू धर्म का तुलनात्मक अध्ययन कर धर्म दर्शन को नई दिशा प्रदान की। 60 उपनिषदों के अनुवाद को उन्होंने सिरे अकबर नाम दिया। एनक्वेटिल डिपोरन ने इसका अनुवाद लैटिन और जर्मन में किया और इसका नाम औपनिखत रखा। शापनहावर इसी को पढ़ा करते थे। इस क्षेत्र में स्वामी प्राणनाथ ने, जो गुजरात के क्षत्रिय कुलोद्भव साधु थे और महाराज छत्रसाल के गुरु थे, एक पुस्तक श्री कुलजम स्वरूप लिखी। ये प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्होंने हिंदू, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्मों की एकता का बड़ा ही प्रबल प्रतिपादन किया। इनके संप्रदाय के मंदिरों में कुरान शरीफ तथा भागवत पुराण की पूजा होती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म तथा पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर हिंदू धर्म की कमियों की ओर देखना प्रारंभ किया और नवीन सुधार आंदोलन के माध्यम से नवीन चिंतनात्मक प्रणाली में धर्म की व्याख्या की। स्वामी दयानंद इससे अछूते न रहे। उन्होंने नवीन प्रभावों के प्रभाव में ही वेदों की नवीन व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा प्रस्तुत की। इस कड़ी के अंतिम छोर पर आते हैं श्री राम कृष्ण, जो किसी बाह्य प्रभाव से प्रभावित नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे बिल्कुल अपढ़ गांव के निवासी थे तथा साधारण पुजारी के पद पर कार्य करते थे। ये न तो धर्म प्रचारक थे, न कोई दार्शनिक ही, परंतु इन्हें सर्वधर्म समन्वय का मूर्त विग्रह कहा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 6। उनका धर्म समन्वय स्वानुभूत पर आश्रित था। साधनों से सिद्ध उनकी अनुभूति से यही प्रकट हुआ कि जितने मत उतने पथ, परंतु सभी का लक्ष्य एक है। इनके उपदेशों में धर्म की जो तार्किक, वैज्ञानिक तथा मार्मिक व्याख्या मिलती है, वह कोरे पांडित्यपूर्ण ग्रंथों में संभव नहीं। यही नहीं, उन्होंने धर्म तथा दर्शन को अपने जीवन में उतारा था। उन्होंने ईसाई, इस्लाम, सिख, जैन सभी धर्मों की साधनाएं की और तब तक एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी थियोसॉफी द्वारा धर्मों में समन्वय उत्पन्न करने का स्तुत्य प्रयास किया। 20वीं शताब्दी धर्म दर्शन की दृष्टि से गवेषणात्मक, तुलनात्मक तथा विचारात्मक कही जा सकती है। भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रमुख चिंतकों ने धर्मों की एकता की बात अंतर्राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में की तथा धर्म की दार्शनिक विवेचना पाश्चात्य विद्वानों की परंपरा के अनुकूल करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म महासभा में धर्म पर दिए भाषण, जो 10 खंडों में प्रकाशित है, धर्म दर्शन की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक द रिलीजन ऑफ मैन तथा रहस्यवादी श्री अरविंद के धर्म संबंधी दार्शनिक विवेचन समकालीन धर्म दर्शन के महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का सर्वधर्म समन्वय उनकी विभिन्न कृतियों में तथा माई रिलीजन नामक पुस्तक में प्रकट होता है। धर्म दर्शन में गांधी जी की देन अमूल्य कही जा सकती है। डॉक्टर भगवान दास तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समकालीन धर्म दार्शनिकों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। डॉक्टर भगवान दास की दी एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स तथा समन्वय महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डॉक्टर इकबाल की पुस्तकें दी सीक्रेट ऑफ द सेल्फ तथा द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट तथा इस्लाम भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म विज्ञान के प्रहारों से धर्म की रक्षा की है। धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करके धर्मों में एकता पैदा करने का सफल प्रयास किया है। उनकी पुस्तकें धर्म पूर्व और पश्चिम, प्राच्य धर्म एवं पाश्चात्य विचार, द रिलीजन वी नीड, द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, धर्म दर्शन की अमूल्य निधि है। स्वामी अभेदानंद की पुस्तक फिलॉसफी एंड रिलीजन, डॉक्टर आर डी रानाडे की पुस्तक इंडियन मिस्टिसिज्म, पी एन श्री निवासचारी की मिस्टिस्कस एंड मिस्टिसिज्म, के एस राम स्वामी की द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मिस्टिसिज्म भारतीय धर्म दर्शन में विशेष महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति द्वारा धर्म की सूक्ष्म दार्शनिक व्याख्या उनकी कृतियों में अस्पष्टता से की गई है। महेंद्रनाथ सरकार की हिंदू मिस्टिसिज्म, डॉक्टर एन के देवराज की हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, पंडित परशुराम चतुर्वेदी की रहस्यवाद तथा डॉक्टर याकूब मसीह की पुस्तकें समकालीन धर्म दर्शन तथा धर्म दर्शन प्राच्य एवं पाश्चात्य धर्म दर्शन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मसीह ने समाधि मूलक भारतीय धर्म दर्शन को स्वीकार करके इस दिशा में एक नवीन आयाम जोड़ा है। इतना ही नहीं, अब विभिन्न विश्वविद्यालयों में धर्म दर्शन पर बड़े ही उच्च कोटि के शोध कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर गिरजा शंकर राय का रिलीजियस एक्सपीरियंस तथा इस ग्रंथ के लेखक का शोध ग्रंथ धर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण इस दिशा में उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त अनेक कार्य तुलनात्मक धर्म पर संपन्न हो रहे हैं, जिससे भारतीय धर्म दर्शन का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। अगला शीर्षक है धर्म के अध्ययन की विधियां। प्रोफेसर ए ई वर्ट ने धर्म के अध्ययन की मूल विधियों को दो रूपों में बांटा है। पहला है शास्त्र एवं परंपरा मूलक विधि, दूसरा है चिंतन एवं समीक्षा मूलक विधि। पृष्ठ संख्या 7। शास्त्र, श्रुति एवं परंपरा के आधार पर विशिष्ट धर्मों का जो अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है वह परंपरा मूलक विधि है। इसके अतिरिक्त धर्म का आलोचनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तथ्यात्मक और दार्शनिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। इन सभी रूपों में किए जाने वाले अध्ययन को चिंतन मूलक विधि में रखा जा सकता है। यदि दार्शनिक विधि को वैज्ञानिक विधि से अलग रखें तो धर्म का अध्ययन निम्नलिखित तीन रूपों में किया जाता है। पहला है धर्मशास्त्र, दूसरा धर्म विज्ञान, तीसरा है धर्म दर्शन। अब है पहला धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को अंग्रेजी में थियोलॉजी कहते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर दर्शन या ईश्वर शास्त्र। इसमें श्रुति शास्त्र अथवा परंपरा के आधार पर ही धर्म का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह धर्मशास्त्र कहलाता है। धर्मशास्त्र कोई सामान्य विषय नहीं माना जाता। प्रत्येक धर्म अपनी परंपरा, धर्म ग्रंथ और श्रुतियों पर ही आधारित होता है। इसलिए अलग-अलग धर्मों का अलग-अलग धर्मशास्त्र भी होता है। जैसे ईसाइयों, मुसलमानों, यहूदियों, बौद्धों तथा हिंदुओं आदि का अलग-अलग धर्मशास्त्र है। विशिष्ट धर्मशास्त्रों का यह काम होता है कि वे अपने धर्म के प्रति किए गए आक्षेपों का समाधान करें, श्रुति या परंपरा में विश्वास रखें और धर्म को संरक्षित अथवा व्यवस्थित करें। दूसरा शीर्षक है धर्म विज्ञान। धर्म विज्ञान में धर्म का वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत धर्म इतिहास, धर्म मनोविज्ञान, धर्म समाज विज्ञान, तुलनात्मक धर्म और धार्मिक घटना क्रिया विज्ञान आते हैं। अब शीर्षक अ है धर्म इतिहास। धर्म इतिहास द्वारा विभिन्न देशों और कालों में धर्म में होने वाले परिवर्तनों, विकास और पतन के कारणों और नियमों को जाना जाता है। धर्म इतिहास यह भी ज्ञात करता है कि एक समाज या समुदाय का धर्म दूसरे समुदाय के धर्म को किस प्रकार प्रभावित करता है। धर्मों के पारस्परिक संबंध का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करना भी धर्म इतिहास का महत्वपूर्ण कार्य है। अब अगला शीर्षक है ब धर्म मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। प्रोफेसर जेम्स वार्ड के शब्दों में मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है। अनुभव का अर्थ केवल ज्ञानात्मक ही नहीं, बल्कि क्रिया या व्यवहार भी इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार मनोविज्ञान जिस विषय सामग्री का उपयोग करता है, वह मानव व्यवहार और अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त करता है। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का कार्य निरीक्षण और वर्णन करना है। संक्षेप में मन की व्याख्या शरीर के आधार पर की जाती है। सभी मानसिक क्रियाएं दैहिक या भौतिकवादी आधार पर विश्लेषित की जाती हैं, परंतु इससे यह भी इंगित होता है कि मानसिक प्रक्रिया और मानव जीवन की आध्यात्मिक व्याख्या भी होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के विषय दर्शन तथा तत्वशास्त्र से भी संबंधित होते हैं। मानव मन की क्रिया और उसके व्यवहार का अध्ययन अंतिम तत्वशास्त्रीय विषयों के आधार पर भी होना चाहिए। यह कार्य धर्म मनोविज्ञान ही करता है। धर्म मनोविज्ञान मानव मन की क्रियाओं का अध्ययन धार्मिक विचारों और उत्तेजनाओं के संदर्भ में करता है। इसका कार्य विभिन्न और विस्तृत धार्मिक घटनाओं और क्रियाओं का वर्णन करना है। इसके अंतर्गत धार्मिक चेतना और अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, या धर्म के तात्विक प्रश्नों से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन चेतन तथा अचेतन मानसिक क्रिया के आधार पर करता है। पूजा, प्रार्थना, ईश्वर में विश्वास, रहस्यात्मक अनुभूति, धार्मिक परिवर्तन आदि विषय धर्म मनोविज्ञान के प्रतिपाद्य विषय हैं। धार्मिक अनुभूतियों की प्रामाणिकता तथा सामग्री के लिए धर्म मनोविज्ञान सांख्यिकीय विधि का भी उपयोग करता है, परंतु धर्म मनोविज्ञान अपनी विधियों से धर्म मनोविज्ञान अध्ययन कहाँ तक सही कर सकता है, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। पृष्ठ संख्या 8। अगला शीर्षक है स है धर्म समाज विज्ञान। धर्म का सामाजिक दृष्टि से अध्ययन कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार धर्म के मानसिक पहलू का अध्ययन धर्म मनोविज्ञान द्वारा होता है, उसी प्रकार इसके सामाजिक पक्ष का ज्ञान धर्म समाज विज्ञान द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें धार्मिक समूह, धार्मिक सहकारिता और संगठन के अंतर्गत नियमों और कारणों का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्री धर्म को एक सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए धार्मिक मतों, सिद्धांतों, परंपराओं, संगठनों आदि का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। इसी के आधार पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अगला शीर्षक है द तुलनात्मक धर्म। आधुनिक काल में तुलनात्मक धर्म का अत्यधिक महत्व है। इससे विभिन्न धर्मों की एकता सिद्ध की जा सकती है, जिससे विभिन्न देशों में धर्म के कारण उत्पन्न होने वाली तनाव और संघर्ष की स्थिति समाप्त की जा सकती है। इनके अंतर्गत धर्मों की समानता के आधार पर धार्मिक क्रियाओं, विश्वासों और परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इस तुलना में इसके समर्थक कहाँ तक सफल कहे जा सकते हैं, कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस विषय में टाइलर, टीएच हक्सले, हार्टलैंड और फ्रेजर ने विशेष रूप से कार्य किया है। अगला शीर्षक है य धार्मिक घटना क्रिया विज्ञान। धर्म दर्शन का एक प्रमुख कार्य है धार्मिक घटना क्रिया और अनुभव का अध्ययन करना। इस अध्ययन को कभी कभी एक टेक्निकल नाम दिया जाता है, जिसे धार्मिक घटना क्रिया विज्ञान या फेनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजन कहते हैं। इन धार्मिक घटनाओं का मनोवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। हम धर्म के आंतरिक पक्ष को बाह्य पक्ष की क्रियाओं तथा रीत रिवाज, विश्वास, परंपरा आदि के बिना नहीं जान सकते। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर आंतरिक पक्ष यथा मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं को जाने बिना धार्मिक रीत रिवाज, परंपरा तथा विश्वास को नहीं समझ सकते। इसलिए दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सारांश यह है कि घटना क्रिया विज्ञान द्वारा धर्म का तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। धर्म का मूल रूप तथ्यों पर ही आधारित होता है, अतः यह मूल रूप में निरपेक्ष दृष्टिकोण द्वारा विभिन्न धार्मिक तथ्यों का परिचय प्राप्त करता है। यह तुलनात्मक धर्म से भिन्न है, क्योंकि तुलनात्मक धर्म की तरह इसमें सत्यता, असत्यता एवं सिद्धांतों का मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता। यह केवल तथ्यों का अर्थ ग्रहण करता है। यह ऐतिहासिक पद्धति से भी भिन्न है, क्योंकि इतिहास का दृष्टिकोण सीमित होता है, परंतु इसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। इसी तरह यह धर्म मनोविज्ञान और धर्म समाज विज्ञान से भी भिन्न है। इसका संबंध केवल धर्म के तथ्यात्मक ज्ञान से ही है। अंत में यह कहा जा सकता है कि इसे धर्म विज्ञान का प्रमुख आधार माना जा सकता है। कुछ लोग इसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करते हैं, परंतु यह मूल रूप से ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर ही आधारित है। अगला शीर्षक है, तीसरा है धर्म दर्शन। उपर्युक्त समस्त विधियां वैज्ञानिक कही जा सकती हैं, इसलिए उनको धर्म विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इन वैज्ञानिक विधियों द्वारा धर्म का अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा सकता। धर्म का संबंध दर्शन से अधिक निकट है, इसलिए धर्म का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। पृष्ठ संख्या 9। धर्म के तात्विक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष को दार्शनिक अध्ययन ही विश्लेषित कर सकता है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। यह मानव अनुभव का तात्विक एवं तथ्यात्मक अर्थ संपूर्णता की दृष्टि से प्राप्त करता है, अतः धर्म दर्शन का बौद्धिक विवेचन करता है। धर्म के अध्ययन की यह दार्शनिक पद्धति है। सारांश में धार्मिक अनुभूतियों के स्वरूप, कार्य, मूल्य एवं सत्यता का दार्शनिक विवेचन एवं विश्लेषण ही धर्म दर्शन है।